ओम शांति। साकार मम्मा बाबा के हस्तों से घड़ी चैतन्य मूर्ति, दादियों के अंग संग में रंगी आदरणीय संतोष दीदी जी हम सबके बीच में हैं। हम एक हाथ की ताली बजाकर इस अलौकिक वातावरण में दीदी जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। अभिनंदन है। दीदी जी की बचपन से ही अध्यात्म में रुचि रही। 1964 में आप ईश्वरीय ज्ञान के संपर्क में आई और बाल्यकाल से ही आपको मम्मा बाबा की पालना का अलौकिक अनुभव प्राप्त हुआ और उसमें भी विशेष दादियों के अंग संग का भी अनुभव और ब्रह्मा बाबा की लौकिक बहू ब्रिजेंद्रा दादी के साथ का सानिध्य भी आपको प्राप्त हुआ और उनके साथ के बहुत विशेष अनुभव आपने अपने जीवन में संजोए हैं। आप नाम मात्र सायन सेवा केंद्र में रहती हैं, लेकिन ज्यादातर आपका समय मुख्यालय माउंट आबू बेहद यज्ञ की जिम्मेवारियां संभालने में बीतता है। सायन सेवा केंद्र वो सेवा केंद्र है जो 1955 में ब्रह्मा बाबा के कमल हस्तों से बॉम्बे में पहला सेंटर जो स्थापित हुआ। आप भारत में तो अपनी सेवाएं देती ही हैं, साथ साथ आपने विदेश में भी बहुत सारी जगह पे ट्रेवल किया है, जैसे अमेरिका, लंदन, दुबई, मलेशिया, सिंगापुर आदि स्थानों पर भी आपने बाबा के ज्ञान से अनेक आत्माओं को लाभान्वित किया है। जैसा आपका नाम है वैसा ही आपका व्यक्तित्व है। आपके चेहरे से संतुष्टता और प्रसन्नता सदा झलकती है। आप सबको संतुष्ट करती हैं। आप लव एंड लॉ का एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आपकी नेतृत्व कला बेमिसाल है। वर्तमान समय आप आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और तेलंगाना की जोनल चीफ तो हैं ही, साथ में ब्रह्मा कुमारीज की जॉइंट चीफ भी हैं। राजयोगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के सोशल सर्विस विंग की आप चेयरपर्सन हैं और आज विशेष हम आपसे सुनेंगे ब्राह्मण जीवन में उमंग उत्साह। आदरणीय संतोष दीदी जी,
इस पुरुषोत्तम संगम युग पर बेहद के बाबा ने हम बच्चों को अपना बना करके हमें ज्ञान और योग के पंख तो दिए ही, परंतु उसके साथ साथ और भी दो पंख उमंग और उत्साह के दिए। वैसे पंछियों को दो ही पंख होते हैं, पर हम जो बाबा के पंछी हैं हमें चार पंख है, ज्ञान योग और उमंग उत्साह, क्योंकि मनुष्य जीवन में अगर उमंग उत्साह नहीं है तो वो जीवन निरस लगती है, फीकी लगती है। इसीलिए बाबा ने हम बच्चों को सदैव उमंग उत्साह में रहना सिखाया और हमें इस बात की याद दिलाई कि संगम युग ये उत्सव का सारा युग है, जिस उत्सव में तुम सदैव बाबा के साथ साथ उत्सव मनाते रहते हो और सदैव उमंग उत्साह में रह करके आगे बढ़ते रहते हैं। कोई भी कार्य जब करना होता है तो अगर उमंग और उत्साह होता है तो वो कार्य बहुत इजी हो सकता है, सहज होता है। और बहुत जल्दी उसकी सफलता हमें मिलती है। परंतु अगर उस कार्य के लिए भी हमको उमंग उत्साह नहीं होगा तो बहुत मेहनत करने के बाद भी मुश्किल से सफलता को प्राप्त करते हैं। हम ब्राह्मणों की जीवन तो है ही सफलता भरी, इसीलिए बाबा हमेशा हम बच्चों को कहते हैं उमंग और उत्साह ये तुम बच्चों का श्वास, जैसा श्वास के बिगैर जीवन चल नहीं सकता है वैसा संगम युग पर उमंग उत्साह के बिगैर भी जीवन चल नहीं सकता। जैसा श्वास अगर कम ज्यादा चलता है तो उसका इफेक्ट तुरंत शरीर के ऊपर होता है, वैसा ही हम देखते हैं अगर चलते चलते उमंग उत्साह कम होता है किसी का तो उसके जीवन के ऊपर उसका तुरंत इफेक्ट होता है, असर होता है। बाबा ने तो हम बच्चों को सदैव उमंग उत्साह में रहने के लिए 365 दिन के लिए 365 सोमान दिए हुए। अगर रोज एक सोमान की भी हम स्मृति रखते हैं, एक सोमान में भी अगर स्थित रहते हैं तो हमारा जो उमंग उत्साह है वो सदैव बना रहता है। और बाबा को मालूम है अगर इनको एक ही जैसा अभ्यास करने के लिए कहेंगे तो इनके अंदर इतना उमंग नहीं भरेगा, इसीलिए बाबा अलग अलग टाइटल देके, अलग अलग सम्मान दे करके हम बच्चों को वैरायटी सम्मान में स्थित होने की प्रेरणा देते हैं। और जितना जितना हम उसको प्रैक्टिकल में लाते हैं, सम्मानों को स्मृति में लाते हैं, उस स्मृति के द्वारा हमारे अंदर समृद्धि आती है, शक्ति आती है, और शक्ति के आधार पर हम अपने जीवन में विजय प्राप्त करते हैं। विजय प्राप्त करने के बाद और भी हमारा उमंग उत्साह दुगुना हो जाता है और भी ज्यादा हम उमंग से आगे बढ़ते जाते हैं। आप एक एक अगर सोमान को याद करो, बाबा ने हमें विश्व कल्याणकारी बनाया है, नूरे रतन बनाया है, बाबा ने हम बच्चों को दिल तख्त पर बिठाया है। आपको इतने अनेक अनेक सम्मानों की लिस्ट आपके सामने आ जाएगी, उसमें से कोई भी सम्मान चुन करके आप उस स्थिति में स्थित होने का प्रयत्न करो। अभी ये जो उमंग उत्साह है इसका सारा आधार है संकल्पों के ऊपर। जैसा संकल्प होता है वैसी हमारी स्थिति बनती है, जैसी हमारी स्मृति होती है वैसी हमारी स्थिति रहती है। इसीलिए बाबा हम बच्चों को स्मृति स्वरूप बनाता है। स्मृति का स्वरूप बन जाओ, अर्थात जो भी बाबा के द्वारा तुम्हें लकब मिले हैं, टाइटल मिले हैं, सम्मान मिले हैं, उसको प्रैक्टिकल जीवन में लाओ। तो जितना जितना हम उसको रिवाइज करते हैं, रिवाइज करने के बाद ही हमारे अंदर रियलाइजेशन की शक्ति आती है, और जिस महसूसता शक्ति के आधार पर हम अपने को परिवर्तन करके आगे बढ़ते जाते हैं। तो ये संगम युग को वरदान है, इस वरदान को हमें प्रैक्टिकल में जीवन में लाना है, सदैव उमंग उत्साह में रहना है और औरों को भी उमंग उत्साह भरना है। वैसे भी देखो यात्रा पर जब जाते हैं, चलते चलते अगर कोई थक जाता है तो उसका साथी जो होता है अगर वो उमंग उत्साह वाला है तो उसको वापस उमंग उत्साह भरा करके वापस चलना सिखा देता है। तो वैसे ही हम सब रूहानी यात्रा के ऊपर है और हम सभी का लक्ष्य एक ही है कि हम सब ब्राह्मणों को बाप समान बनना है, हम ब्राह्मणों को फरिश्ता बनना है, क्योंकि ब्राह्मण से जब तक फरिश्ता नहीं बने हैं तो देवता नहीं बन सकते हैं। मंजिल बहुत ऊंची है, मंजिल दूर की भी है, इसमें हमारी जो स्पीड है वो स्पीड बहुत फास्ट चाहिए। बाबा ने हम बच्चों को इस बात की जानकारी दिया, पहले हमेशा कहते थे कि चढ़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला, भक्ति मार्ग में भी गायन करते हैं, परंतु बाबा ने आके हम बच्चों को अनुभव कराया, चढ़ती कला नहीं उड़ती कला तेरे भाणे सर्व का भला। अगर तुम्हारे अंदर उड़ती कला है तो उड़ती कला से ही तुम औरों का भला कर सकते हैं, खुद का भला कर सकते हैं, और उस उड़ती कला के लिए उमंग उत्साह की जीवन में अत्यंत आवश्यकता है। कभी कभी किसी का अनुभव सुनते हैं, अपना अनुभव सुनाते हैं कि हम पहले जब आते थे तभी हमारे को ज्यादा उमंग उत्साह था, ज्यादा लगन थी, चलते चलते कभी कभी हमारा उमंग उत्साह कम हो जाता है, लगन कम हो जाती है। अभी वास्तव में देखा जावे जब हम मंजिल की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, स्थूल रीति से भी अगर हम यात्रा से कहां अपने घर की तरफ जाते हैं, जितना जितना नजदीक जाते हैं उतना उतना हमारा उमंग बढ़ता है, उमंग कम नहीं होता। हम समझते अभी पहुंचे कि पहुंचे, बाबा हम बच्चों को हमेशा कहते हैं, बच्चे तुम्हें अभी नई दुनिया के पेड़ दिखाई पड़ने चाहिए, तुम्हें नई दुनिया के महल दिखाई पड़ने चाहिए, तुम्हारे आंखों के सामने सदैव स्वर्ग नई दुनिया तुम्हारा वरसाई घूमना चाहिए। इसीलिए बाबा कहते तुम्हारे एक आंख में मुक्ति और दूसरे आंख में सदैव जीवन मुक्ति रहे, ऐसी जब स्मृति तुम्हें रहेगी तो ये जो पुरानी दुनिया है इस पुरानी दुनिया को भूलने के लिए तुम्हें कभी भी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। साकार बाबा को हमने देखा, बाबा को कितना नशा रहता था कि मैं अभी अभी ये शरीर छोड़ूंगा और जाकर के मिचनू बनूं। बाबा ऐसे स्वर्ग की, अभी भी आप बाबा की मुरली पड़ेंगे, बाबा कभी कभी जब स्वर्ग का वर्णन करते हैं बैठ करके, हम सभी जैसे कि उस दुनिया में चले जाते हैं। तो उसी प्रकार हमारे आंखों के सामने भी सदैव बाबा जो नई दुनिया स्थापन कर रहा है उसके नजारे आने चाहिए, उसकी सीन सीनरियां आनी चाहिए, जिससे हमारा उमंग उत्साह सदैव बढ़ता रहे। किसी का अगर बाप लौकिक में भी मकान बनाता है तो सारा दिन बच्चे प्लान करते रहते हैं कि अभी हमारा नया मकान बनेगा तो हम ऐसा फर्नीचर लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, उनकी बुद्धि में वो ही घूमता रहता है सारा समय। रास्ते में भी कोई मिलेगा, कोई उससे पूछेगा या नहीं पूछेगा तो भी बड़ी खुशी से बताते हैं कि अभी हमारा नया मकान बन रहा है, अभी हम उधर जाने वाले हैं, हमारा मकान इतना बड़ा है, कितना खुश होते। और हमारा बाप तो सारी दुनिया ही नहीं बनाता है, तो हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए और कितनी स्मृति रहनी चाहिए उस नई दुनिया की। इसीलिए हमें हमेशा इन बातों का ध्यान रखना है कि हमारे को ये पुरानी दुनिया नहीं दिखाई पड़े परंतु नई दुनिया दिखाई पड़े। बाबा ने हम बच्चों को बताया है, बच्चे ये पुरानी दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, इसीलिए मैं नई दुनिया स्थापन कर रहा हूं। तो बाबा जिस प्रकार कहते हैं कि ये पुरानी दुनिया तुम्हारे रहने के लायक नहीं है, सचमुच हमको इस बात का अनुभव होता है कि ये पुरानी दुनिया जो जड़जड़ी भूत हो गई है, जिसमें दुख अशांति झगड़े मारामारी है, ये हमारे रहने के लायक नहीं। हमारे रहने के लायक नई दुनिया है, हमारे रहने के लायक हमारा घर परम धाम। इसकी जब तक हम अनुभूति नहीं करते हैं, इसका अनुभव नहीं होता है, तब तक हमारी बुद्धि इस पुरानी दुनिया से टूटती नहीं। और जब पुरानी दुनिया से बुद्धि नहीं टूटती है, तो वो खुशी वो उमंग उत्साह हमारे अंदर भरता नहीं है कि बाबा हमारे लिए कौन सी दुनिया स्थापन कर रहा। अभी हम देखते हैं कि बाबा ने तो हमारे को वो स्मृतियां दिलाई, बाबा ने हमें अथाह ज्ञान का खजाना दिया, जिस ज्ञान खजाने के द्वारा हम सदैव खुशी में रहते हैं। परंतु चलते चलते खुशी गायब होने का क्या कारण होता है? उमंग उत्साह कम होने का कारण क्या होता है? जो कभी कभी स्पीड जो है वो फास्ट होने के बदले पुरुषार्थियों की स्लो हो जाती। हम यात्रा पर है, यात्रा से कोई वापस नहीं जाते हैं, परंतु चलते चलते थक जाते हैं तो क्या होता है? चढ़ती कला के बदले ठहरती कला हो जाती। अगर हम पूछेंगे कि आप कैसे हैं, तो कहेंगे चल रहे हैं। चल तो रहे हैं, परंतु कौन सी स्पीड से चल रहे हैं? हमें ये देखना, चलते तो सब हैं, परंतु चलने चलने में स्पीड का बहुत फर्क होता है। तो हम कौन सी स्पीड से चल रहे हैं? तीव्र पुरुषार्थ कर रहे हैं। मम्मा ने हमें बताया कि तीव्र पुरुषार्थी किसको कहा जाता है? तीव्र पुरुषार्थी उसको कहे जो एक बारी भूल करने के बाद वो भूल वापस कभी भी जीवन में रिपीट नहीं, उसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थी। और हम उसका डेफिनेशन क्या करते हैं पुरुषार्थ का? भूलें करते रहेंगे, और अगर कोई कहेगा भाई ये भूल हो गई, तो कहते क्या करे पुरुषार्थी। तो पुरुषार्थी का मतलब भूलें करना नहीं है, पुरुषार्थी का मतलब है अभूल बनना। तो देखो लक्ष्य के ऊपर है, जैसा हमारा लक्ष्य होता है वैसे ही हमारे लक्षण होते हैं। तो सदैव अगर हमें ये याद रहता है कि हमें अभूल बनना है, हमें तीव्र पुरुषार्थ करके अपनी अपना जो लक्ष्य है बाप समान बनने का या कर्मातीत बनने का, उस लक्ष्य तक मुझे पहुंचना है जरूर। अभी चलते चलते रास्ते में बहुत साइड सीन आते, साइड सीन जब ये आते हैं तो स्पीड कमती होने का कारण है। कोई कोई खड़े होकर साइड सीन देखना चालू कर देते हैं। तो यहां भी जो भी साइड सीन आते हैं, अर्थात जो परिस्थितियां आती है, तो परिस्थितियों को क्रॉस करने के बजाय खड़े होकर देखते हैं, सोचते हैं ये ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो बाबा कहता है बच्चे अगर तुम क्यों क्या के जंगल में चले जाएंगे तो तुम्हारी स्पीड बढ़ेगी कैसे? तुम आगे कैसा बढ़ेगे? आगे नहीं बढ़ सकेगे, क्योंकि तुम्हारी बुद्धि में तो वही चक्कर चलता रहेगा। और जितना जितना क्वेश्चन मार्क होता है हमारे पास, हमारी स्पीड उतनी ढीली हो जाती है। इसीलिए जो भी कुछ होता है वो ड्रामा प्लान अनुसार होता है। इस बात को बुद्धि में रख करके अगर हम चलते हैं, नथिंग न्यू का पाठ अगर हमारे को पक्का है, आज भी बाबा ने कहा ना, अभी जो हुआ वो 5000 बरस के बाद रिपीट होगा। ये ड्रामा हू बहु रिपीट होता रहता है। जो बीत गया वो ड्रामा अगर इस पॉइंट को पक्का कर लेते हैं तो कभी भी हमारे आगे कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा होता। और एक बार अगर एक संकल्प आया कि ऐसा क्यों हुआ, ये नहीं होना चाहिए, अगर ऐसा संकल्प आया तो उसके पीछे प्रश्नों की झड़ी लग जाती, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये बात मेरे पास ही क्यों आती है, परीक्षाएं मुझे ही क्यों आती है, अरे जब डिग्री मेरे को चाहिए तो परीक्षाएं तो मेरे को ही आएगी ना। और ये हमेशा याद रखो, जिसको ज्यादा परीक्षाएं देनी पड़ती हैं, वो ये समझ लेवे कि मेरा पद बहुत ऊंचा है इसीलिए मेरे पास बहुत परीक्षाएं आती है, बहुत मेरे पास समस्याएं आती है। तो समस्याओं को देख के घबराने के बजाय, आप समस्याओं को देख के घबराओ नहीं, समस्याओं को देख के खुश हो जाओ कि ये समस्या आई है किसके लिए आई है, मुझे आगे बढ़ाने के लिए आई है, मुझे धक्का देने के लिए आई है कि आगे चल, इस समस्या को तू क्रॉस कर, क्रॉस करके अपने मार्क्स जमा कर। तो जब हमारा लक्ष्य इतना ऊंचा होता है कि ये तूफान नहीं है परंतु ये तोहफा मिल रहा है, हमारे को गिफ्ट मिल रही है, कौन सी गिफ्ट मिल रही है, आगे बढ़ने की गिफ्ट मिल रही है, तो जितना जितना हम आगे बढ़ते जाते हैं उतना उतना अनेक प्रकार से माया भी अपना जोर तो जरूर जमाती है, परंतु बाबा ने जैसा बोला ना कि पांच विकारों के ऊपर तुम्हारा विजय, ये पांच विकार भी तुम्हारे लिए डांस करने के लिए क्या हो जाती है, एक स्टेज बन जाती है, जैसा श्री कृष्ण ने बताते सर्प के ऊपर डांस किया, हम लोगों का ही तो यादगार है। तो ये कौन से सर्प है, ये माया रूपी सर्प है, ये विकार रूपी सर्प है जिसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाता है, अर्थात ये ठंडे हो जाते, हम जोर पकड़ लेते हैं। तो इसीलिए कभी भी जो भी कुछ होता है उस समय अगर आपको ड्रामा याद होगा तो कभी भी आपका उमंग कमती नहीं होगा, नहीं तो जब घड़ी घड़ी कोई भी बात आती है ना तो उसको देख करके क्या होता है, उमंग कमती हो जाता है, उत्साह कमती हो जाता है, थकावट आ जाती है। अभी अगर थकावट आएगी तो स्पीड क्या होगी, जरूर कम हो जाएगी, आगे कैसा बढ़ेंगे। तो इसीलिए क्यों क्या के प्रश्न में जाने के बजाय सदैव फुल स्टॉप लगाना सीख जाओ। बाबा ने हम बच्चों को बताया सिर्फ तीन बिंदियां लगाओ सवेरे उठ, वो कौन सी तीन बिंदियां, आप, बाप और ड्रामा। तो आप अगर ये तीन बिंदियां लगाएंगे अर्थात सदा स्व के स्वमान में रहेंगे, बाबा की याद में रहेंगे, और ड्रामा अगर हमको सदैव पक्का रहेगा तो कभी भी हमारा उमंग उत्साह कम नहीं हो सकता है। सदैव हमारे मुख से क्या निकलेगा, वाह ड्रामा वाह, हाय ड्रामा हाय नहीं, पहले हम लोग हाय हाय करते थे, कोई भी बात होती थी हाय मेरा नसीब खराब है, अभी कोई कहेगा मेरा नसीब खराब, हमारे जैसा नसीबवान, हमारे जैसा बख्तावर इस दुनिया में दूसरा कोई नहीं है। नशा चढ़ता है नहीं चढ़ता है आप, तो जब इतना हम बाबा ने हम बच्चों को आके पद्मा पद्म भाग्यशाली बनाया, किसी को सपन में भी था कि भगवान हमको घर बैठे मिल जाएगा, भगवान हमको अपना बनाएगा, अरे भक्ति मार्ग में तो हमने भगवान को क्या कहा था, आप ऐसी ऐसी बातें याद करो आपको नचा चढ़ेगा, आपका उमंग उत्साह बढ़ेगा। भक्ति मार्ग में हम कहते थे हमको नौकर रखो जी, नौकर नहीं तो चाकर, चाकर माना नौकर का भी नौकर, वो भी नहीं रख सकता है तो उसका भी नौकर चूकर रखो जी। बाबा ने हमको नौकर चाकर चूकर नहीं रखा, क्या किया, अपना सिरमौर बना दिया, अपना अपना नूरे रतन बना दिया, बाबा ने हमें अपने कंधे के ऊपर चढ़ा दिया, बाबा ने आके हमें अपनी स्मृति दिलाई कि तुम्हारा स्थान कौन सा है। स्थान हमारा इस समय पर बाबा ने देखो चारों चारों स्थान हमको बताए, परम धाम में भी तुम्हारा बाबा के साथ साथ नजदीक स्थान है। अब निराकारी झाड़ देखो, उसमें शिव बाबा के नजदीक कौन है? आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्मा है। फिर स्वर्ग में आओ, राजाई करने के लिए हम किसके साथ है? श्री कृष्ण के साथ, फर्स्ट नंबर की आत्मा के साथ। द्वापर से लेके देखो, हमारी जो पूजा होती है वो किसी की होती है? कितनी विधि पूर्वक पूजा करते, हर कर्म की पूजा है, देवी देवताओं के हर कर्म की पूजा है। अभी देवी देवताओं को भोग लग रहा है, अभी देवताएं विश्राम कर रहे हैं, अभी देवताओं का श्रृंगार हो रहा है, हर कर्म की पूजा है, ऐसी किसी की भी पूजा नहीं होती। और संगम युग पर देखो, स्वयं भगवान हमको बैठ के रोज परम धाम से आके पढ़ाता है, क्या नसीब है। हाँ, रोज परम धाम से आके भगवान हमको पढ़ावे। आज किसी का टीचर अगर दूसरे है, दूर से कहाँ शहर से आता है, स्टूडेंट को कितना नशा रहता है, अरे हमारा टीचर है ना बहुत दूर से आता है, दूसरे गांव से रोज पढ़ाने के लिए आता है, और हमारा सुप्रीम टीचर तो दूसरे लोक से आता है यहाँ पर हमको पढ़ाने के लिए, तो हमको उसकी पढ़ाई का कितना कदर चाहिए, हमको उसका कितना कदर करना चाहिए कि जो इतने दूर से आता है हमको पढ़ाने के लिए, हमें पढ़ाई के ऊपर पूरा पूरा ध्यान देना है। उमंग उत्साह कम होने का कारण ये है कि अलबेलापन, अलबेलापन ये ऐसी स्थिति है जैसे जागते हुए भी सोए हुए, जैसा कहते हैं ना, जो सोया है उसको जगाना सहज होता है, पर जो जागता है उसको जगाना कोई सहज नहीं होता है, कठिन होता है। कोई कोई ढोंग करके सो जाते हैं ना, तो सामने वाले उसको हिला, अरे उठ अरे उठ, वो उठेगा ही नहीं, सोया पड़ा रहेगा। तो ये अलबेलापन भी ऐसा है। अभी कौन बना है संपूर्ण, जो हम बन जाएंगे कोई बात नहीं, अभी तो बहुत टाइम पड़ा है, हम तो है ही बाबा के बच्चे, बाबा जैसा ही बनेंगे और कैसा बनेंगे। बाबा कहते हैं ऐसा अलबेलापन नहीं चलेगा। तो ये जो अलबेलापन है, इस अलबेलेपन के कारण क्या होता है, हमारे पास इतना उमंग नहीं रहता है आगे बढ़ने का। परंतु अगर इस अलबेलेपन को छोड़ देवे, क्योंकि हमारी पढ़ाई भी है और माया के साथ लड़ाई भी, इसीलिए हमें बहुत चुस्त बनकर के चलना है। जितना जितना हम चुस्त बनकर के चलते हैं, उतना उतना हमारी क्या होती है, सदैव विजय होती रहती है। तो हमें विजय प्राप्त करना है, इस बात का हमें क्या करना है, ध्यान देना। हमें हमेशा ये लक्ष्य रखना है कि हमको बाबा समान बनने का है। बाबा का कभी उमंग उत्साह कम हुआ, फॉलो फादर क्यों कहा जाता? बाबा कहते थे बच्चे, तुम्हारा जो लक्ष्य है ना वो बहुत ऊंचा है। जैसा ऊंची पहाड़ी के ऊपर ट्रेन जाती है तो उसको डबल इंजन लगाना पड़ता है, तो उसी प्रकार तुम्हारी ये ऊंची चाड़ी होने के कारण, ऊंचा लक्ष्य होने के कारण तुम्हारे को दो इंजन लगे हुए हैं, बाप और दादा। इन दोनों को तुम्हें फॉलो करना है। निराकारी स्थिति में निराकार बाप को फॉलो करना है, और साकारी स्थिति कर्म योगी बनने के लिए तुम्हें ब्रह्मा बाप को फॉलो करना। अभी आप बाबा को सामने लाओ, साकार बाबा को। बाबा का उमंग उत्साह आपने कभी कम देखा? बाबा की हिस्ट्री तो पढ़ी होगी ना। अच्छा, बाबा को नहीं देखो? बाबा की हिस्ट्री पढ़ी है नहीं पढ़ी है? जिन्होंने पढ़ी है हाथ ऊपर करो। किताब है अपने पास, नहीं पढ़ी होगी तो जरूर पढ़ना। देखो बाबा ने कितनी बड़ी बड़ी परीक्षाएं दी, और बाबा को कितना अपोजिशन हुआ। उस समय तो अकेला बाबा था, अकेला बाबा था, और इतना सारे विरुद्ध हो गए, सारा सिंध विरुद्ध हो गया, हैदराबाद वाले विरुद्ध हो गए, सारे विश्व के पेपरों में क्या क्या आता था, अमेरिका के पेपरों में कितना उल्टा सुलटा आता था। परंतु बाबा की खुशी कब कम नहीं हुई, बाबा का उमंग उत्साह कम नहीं हुआ, बाबा का उमंग उत्साह तो बढ़ता ही गया। ये सिंध वाले घमसान कर करके कभी थक जाते थे, क्योंकि इन्होंने कोई कम नहीं किया, पिकेटिंग किया, लाखा भवन को आग लगा दिया, बहुत कुछ किया, परंतु कभी थक जाते, घमसान करने वाले भी तो थक जाएंगे ना, तो चुप हो जाते थे, कुछ नहीं करते थे। बाबा कहता था आजकल इनको क्या हो गया, कुछ करते नहीं, क्या बात। अभी आप देखो ऐसी स्थिति में बाबा ने मनोरंजन किया, कितना बड़ा प्रॉब्लम। आके कोई पिकेटिंग के लिए सामने बैठ जावे, बंगले को आग लगा देवे, बाबा मस्त। क्या हो गया, कुछ करते नहीं है ये लोग। और आज अगर खुद को चेक करो कि थोड़ी सी बात हो जाती है उसको कितना बड़ा करके रखते। परिस्थिति को बड़ा करना भी अपने हाथ में है और उसको छोटा करना भी अपने हाथ में। कोई भी बात है, अगर बात आती है आप उसको निग्लेक्ट कर डालो, छोड़ दो, आप ही ठीक हो जाएंगे। हम क्या करते, उसको रबड़ माफक खींचते रहते, खींचते ऐसा हो गया, फिर ऐसा हो गया, फिर ऐसा। हमारे संकल्प जो है ना, व्यर्थ संकल्प जो है वो हमारे उमंग उत्साह को खलास करते, हमारी शक्ति को नष्ट करते हैं। सोच सोच के छोटी बात को बड़ा कर देते हैं। परंतु अगर आपको सोचना छोड़ देंगे कि जो होता है वो बहुत कल्याणकारी है, हमारा कभी भी नुकसान नहीं हो सकता है, ये याद रखो। क्यों नहीं हो सकता है, क्योंकि हम कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। संगम युग कल्याणकारी है और हम विश्व कल्याणकारी, हमारा कौन नुकसान कर सकता है। आप इस नशे में रहो, कभी आपका नुकसान नहीं होगा, कुछ भी हो जाएगा तो। आपको ऐसा लगेगा नुकसान हो रहा है, परंतु थोड़े समय के बाद आप देखेंगे तो उससे फायदा ही फायदा। ब्रिजेंद्र दादी बताती थी शुरू शुरू में, देखो है देखने में नुकसान होगा पर रिजल्ट कितनी अच्छी निकलती। कराची में जब शिफ्ट किया हैदराबाद से यज्ञ को, तो सब अलग अलग थे। बाबा भवन अलग था, मम्मा भवन अलग, ये मम्मा भवन अलग था, इनका भाइयों का गोप भवन अलग था। तो रोज ब्रिजेंद्रा दादी वहां की माताओं को, जो माताएं थी उनको बाबा की मुरली में लेके जा, सवेरे क्लास में लेके जाती, बस चलाती थी। ये ब्रिजेंद्रा दादी बस चलाती थी उस जमाने में, बस चला था उसको कार का लाइसेंस, और चलाती थी बस। तो बस चला करके वो लेके जाती। तो एक दिन क्या हुआ, ठंडी के दिन थे, वो स्लोप के ऊपर था, बस स्लोप के ऊपर थी, नीचे उतर रही। तो स्लोप के ऊपर तो फास्ट उतरती है ना बस, तो इसने बस को ब्रेक लगा दिया। अचानक ब्रेक लगा दिया तो बस उल्टी हो गई। तो जितनी भी बहने थी 50-60 जो बहने थी, सब के सब गिर गई, सारी बस ही उल्टी हो गई। तो सवेरे सवेरे तो उधर कोई नहीं था, देखो कैसा दृश्य कैसा है, सवेरे सवेरे उधर कोई नहीं था। फिर उधर कोई वो ब्रेड बेचने वाले, दूध देने वाले, वो लोग जाते ना साइकिलों पर, वो लोग थे, सब भाग भाग के आए। फिर इधर उधर से लोगों को बुलाया, कितनी बहने तो बस के नीचे आ गई थी, वो उन्होंने उठाया। उसमें से एक बहन का तो हाथ ये हो गया, काटना पड़ा, इतनी तकलीफ हो गई उसको। परंतु उस समय ये सभी जो भी बहने थी, इतना इन लोगों को सब, मम्मा भी थी उसमें, मम्मा तो ऊपर का जो दरवाजा होता है वहां, मम्मा आगे की सीट पर ब्रिजेंद्र दादी के पास बाजू में बैठी, तो ऊपर का वो कांच निकल गया और मम्मा उसमें से उड़ करके बाहर दूसरी जगह जाके गिर गए, ये भी गिर गई ऐसा हूं। तो किसको थोड़ी चोट आई, किसको ज्यादा चोट आई, उसी समय हो हल्ला हो गया चारों तरफ, बस गिर गई, बस गिर गई। और फिर एम्बुलेंस आ गई, पुलिस वाले आ गए, सब फिर लेके गए हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में इमरजेंसी बेल बजाई। और ये जो भी थे थी, सब बहने ही बहने थी, तो ये जो भी थी सब ओम की धुनी लगा रही, कोई कोई आए नहीं, वो नहीं, कुछ चू नहीं, कुछ भी नहीं। और एक राधे बहन थी, उसका हाथ उसके नीचे आ गया, बेंगलोर में रहती, वो उसका हाथ इसके नीचे आ गया, बस के नीचे आ गया, तो कुछ भी नहीं, ऐसी पड़ी है बस, उसके ऊपर गिरी पड़ी है। तो फिर किसी ने देखा, बोला तुम चिल्लाओ तो सही ना, तो तुम्हारे को निकाले। तो बोला अभी सब बिजी थे तो मैंने बोला नहीं, आप निकाला तो उसका तो हाथ तो लेट हो गया था, फिर उसको दूसरा हाथ लगाना पड़ा, मतलब ये आर्टिफिशियल। तो फिर उस समय चारों तरफ इनको सबको हॉस्पिटल में लेके गए, हॉस्पिटल में लेके गए तो वहां भी ये तो सब खुश थी, सब ओम की धुनी लगा रही थी। तो डॉक्टरों ने इमरजेंसी में उनके ऐसा सिलाई करना चालू किया, कोई इंजेक्शन नहीं, ये नहीं, वो नहीं, सब सबको बेल बजाई, इमरजेंसी बेल बजाई, इधर उधर से डॉक्टर नर्सेस सब आ गए, क्योंकि इतने पेशेंट थे ना, तो सबको उन्होंने ट्रीटमेंट देना चालू कर दी। तभी हुआ तो ऐसा हादसा हुआ, परंतु उसी समय चारों तरफ पेपरों में, फॉरेन तक चारों तरफ पेपरों में बहुत बड़े अक्षरों में अपना नाम छप गया कि एक लेडी, फर्स्ट लेडी थी जिसने बस चलाई वर्ल्ड में, ये बस फर्स्ट लेडी है जिसने इतनी बड़ी बस चलाई और उसका एक्सीडेंट हो गया, ब्रैकेट में लिखा एक्सीडेंट। तो जब ये लोग ओम की धुनी लगा रहे थे और सबके चेहरे ऐसे थे, तो लोगों को जब मालूम पड़ा कि इनका एक्सीडेंट हुआ है तो लोग हॉस्पिटल में देखने को आए इन लोगों को, पर इन लोगों को देख करके इतना देखा, इतना इनको तकलीफ है, इतना लगा है, ब्लड बह रहा है और ये खुश है सबके सब, कोई रो नहीं रहे, कोई चिल्ला नहीं रहे कुछ, तब से लेके अपना नाम बाला हुआ, जो नाम पहले बदनाम था ना, तब से लेके नाम बाला हो गया कि इस ओम मंडली में कोई शक्ति है, जिस शक्ति के कारण ये लोग इतना आगे बढ़े। फिर दूसरे दिन फिर ब्रिजेंद्र दादी ने बताया, क्योंकि केस तो चला और इनसे सारा पूछा कैसा क्या बस गिरी क्या हुआ, फिर इसको बुलाया कोर्ट में, बुलाया तो ये बाबा से छुट्टी लेकर के गई। जाने के बाद जज ने इनको अपनी कैबिन में बुलाया, बोला हम आपको पिंजरे में नहीं खड़ा करेंगे, कैबिन में बुलाया और कहा देखो बहन, आपकी बहादुरी देख के तो आपको इनाम देना चाहिए, ऐसा आपने पहली बार ये हिम्मत किया और इतना बड़ा काम किया, इतनी बड़ी बस चलाई बैठ करके, परंतु आपकी एक भूल हो गई, आपका लाइसेंस कार का था और आपने बस चलाई, उसके कारण आपको दंड भरना पड़ेगा। तो दंड शायद एक रुपए दंड भरना पड़ा, एक रुपए। तो ये बड़ी खुश हो गई कि दंड तो ज्यादा पड़ा नहीं। तो ये बाबा के पास जब आई, खुशी खुशी से आई, बाबा को बोला देखो बाबा मैं आ गई। बाबा ने कहा तू जीत के आई या हार के आई? तो बोला बाबा कुछ नहीं, उसने जज ने मेरे को बुलाया, ऐसा ऐसा कहा और बोला तुम लोगों में इतनी शक्ति है वगैरह, उसने बहुत महिमा किया जज ने, और आप लोगों को तो आपको इनाम देना चाहिए, परंतु क्या करें हमारे भी कानून से हाथ बांधे हुए है, कोई गुनाह करेगा तो हमारे को तो दंड देना पड़ता है उसको, इसीलिए आपको एक रुपया भरना है। बाबा ने सुना, बाबा ने कहा शेम, अरे तुम सर्वशक्तिवान का बच्चा होके तुम्हारे को दंड पड़ा? ये खुश हो गई थी, इसने समझा एक रुपया दंड पड़ा तो कुछ नहीं हुआ, पर बाबा ने कहा जिसका नाम दंड, दंड तो दंड होता है ना, तो अच्छा नहीं हुआ ये। परंतु तब से लेकर के क्या हुआ, चारों तरफ ये बहुत नाम तब से बाला होने लगा कि ये जो ईश्वरीय विश्वविद्यालय, विद्यालय तो उस समय नहीं बोलते थे, ओम मंडली बोलते थे, इस ओम मंडली के ओम में बड़ा जादू है और इसमें बड़ी शक्ति है। तो देखो देखने को दृश्य कैसा लगता है, पर रिजल्ट उसकी कितनी अच्छी आई, उसके बाद फिर इतनी बदनामी नहीं करते, फिर कम हो गए सारा। तो ये भी सारा ड्रामा में कभी भी हम लोगों का अकल्याण नहीं हो सकता है, सदैव कल्याण होता है। तो जितना हमारा बाबा के ऊपर निश्चय है, उतना ही अगर ड्रामा के ऊपर निश्चय होगा ना, तो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आएगी तो हमारी खुशी कभी गायब नहीं होगी, हमारा उमंग उत्साह कभी गायब नहीं होगा, वो सदैव चलता रहेगा। तो इसीलिए तो बाबा कहता है ना कि तुम खुद के ऊपर भी पूरा निश्चय रखो, बाप के ऊपर भी निश्चय रखो, और उसके साथ साथ ड्रामा के ऊपर भी निश्चय रहो, तो आगे बढ़ते जाएंगे, तुम्हारी खुशी बढ़ती जाएगी, तुम्हारी खुशी कम नहीं होगी। और कभी भी कोई परिस्थिति आवे उसके बाजू में खड़े होके आप देखो नहीं। अभी कोई भी बात है अगर हम उसके नजदीक खड़े होके देखते हैं ना, उसका रूप बड़ा दिखाई पड़ता है। कोई ये चीज है समझे, उसको नजदीक से देखेंगे तो बड़ा रूप दिखाई पड़ता है, पर आप अगर उसको ऊपर से देखेंगे तो क्या होगा, बड़ी चीज भी छोटी दिखाई पड़ती। अभी प्लेन में जाते हैं, बड़ी बड़ी नदियां नाले के माफक दिखाई पड़ती है। कितनी बड़ी नदी, समुद्र नाले के माफक दिखाई पड़ेगा, और आगे चले जाएंगे तो दिखाई भी नहीं पड़ता है, पर ऊपर से इतना छोटा दिखाई पड़ता है। इतने बड़े बड़े जंगल आपको इतने छोटे छोटे दिखाई पड़ेंगे, कुछ नहीं दिखाई, मकान दिखाई नहीं पड़ेगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ये युक्ति बताई हुई है कि अगर कोई भी बात होती है, कोई समस्या आती है ना, समस्या के सामने खड़ा होकर उसको देखना नहीं। आप अपनी ऊंची स्थिति पर चले जाओ कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूं, आप ऊंची स्थिति पर जाके उसको देखो, आपको खिलौना लगेगा, आपको समस्या समस्या नहीं लगेगी। तो बाबा ने हम बच्चों को ये जो युक्तियां बताई है, इन युक्तियों को हमको इस्तेमाल करना है। तो जितना जितना हमारी बुद्धि में ज्ञान धन, ज्ञान की युक्तियां हमारे बुद्धि में जितनी होगी ना, उतना क्या होगा, उसको हम जितना जितना इस्तेमाल करते जाएंगे उतना उतना हमारे जीवन में सफलता और खुशी बढ़ती जाएगी, उतना उतना हमारा उमंग उत्साह बढ़ता जाएगा। नहीं तो हम क्या करते, एक कान से सुन लेते दूसरे कान से छोड़ देते, नहीं ऐसा नहीं करो। इसलिए बाबा कहता है कि जैसा देखो जानवरों में भी अक्ल होता है, एक घंटा घास खाएंगे सारा दिन गाय देखो रवंत करती रहती, तो वैसा तुम एक घंटा भले पढ़ो या सुनो मुरली को, पर सारा समय उसको क्या करो, विचार सागर मंथन करते रहो, कोई एक बात लेके, ज्यादा नहीं, किसी भी एक बात के ऊपर ही सारा दिन अगर तुम सोचते रहेंगे तो क्या हो जाएगा, सोच सोच के उसको प्रैक्टिकल में ला सकेंगे, उसका निचोड़ तुम्हारे अंदर आ जाएगा। तो बाबा ने हमको आगे बढ़ने के लिए, हमारा उमंग उत्साह सदैव कायम रहे, उसके लिए हमें अनेक अनेक युक्तियां बताई हुई है, रास्ते बताए हुई है, सिर्फ उसको इस्तेमाल करना है, उसको याद रख। जैसे डॉक्टर लोग हैं, वकील लोग हैं, कितनी दवाइयां कितनी पॉइंट्स वो लोग याद करके रखते, उसके लिए थोड़ी स्टडी करने की आवश्यकता है, मनन करने की आवश्यकता है, उसके लिए अध्ययन की आवश्यकता है। अध्ययन करके जितना जितना हम उसका मनन चिंतन करते हैं, उतनी हमारी स्थिति जो है वो क्या हो जाती है, मगन हो जाती है। ईश्वरीय याद में जितना जितना मगन रहेंगे तो समय के ऊपर जैसा समय होगा वैसी हमारे को उस समय पर बाबा के द्वारा प्रेरणा मिलती है, और जिस प्रेरणा से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते जाते हैं। नहीं तो क्या होता है, थोड़ी भी बात होती है, बाबा कहते थे छुई मुई जैसी अवस्था नहीं होनी चाहिए, कभी देखेंगे तो बड़े उमंग उत्साह में आएंगे, कभी देखेंगे एकदम ड्रॉ हो जाएंगे, जैसा हथियारी फेंक देते हैं, ऐसा नहीं करो। जैसा नहीं हो, लज्जावंती का पेड़ होता है, हाथ लगाओ ऐसा हो जाएगा, हाथ दूर करो खुल जाएगा, ऐसी स्थिति नहीं होनी चाहिए। आप अपनी स्थिति को हमेशा एक रस बनाने के लिए, हमेशा उमंग उत्साह में रहने के लिए क्या करो, बाबा ने जो सिखाया है उसको अपनी बुद्धि में रख के उसका मनन करते रहो, उसके ऊपर विचार करते रहो, उसको इस्तेमाल करते रहो, तो ये खजाना तुम्हारा बढ़ता जाएगा, और जितना जितना खजाना बढ़ेगा उतनी उतनी तुम्हारी खुशी और उमंग उत्साह भी बढ़ेगा। और परिस्थिति है क्या, दो बातें हैं देखो, एक है परिस्थिति, दूसरी है स्वस्थिति। परिस्थिति बाहर से आती है और स्वस्थिति जो है वो अंदर की है, मेरी है, स्व माना मेरी है वो स्थिति। तो हम लोग क्या करते हैं, स्वस्थिति के लिए जो शक्तियां देनी चाहिए, स्वस्थिति के लिए जो समय देना चाहिए, वो परिस्थिति में उलझ करके वो समय और शक्ति उसमें लगा देते हैं, जिसके कारण स्वस्थिति क्या हो जाती है, वो कमजोर हो जाती। नहीं तो परिस्थिति का आने का रास्ता अलग है, बाहर का है, और स्वस्थिति का आने का रास्ता अलग है, अंदर का है। इनका आपस में उलझने की बात नहीं, पर हम उलझा देते हैं उसको, आपस में लड़ा देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमारी शक्तियां लीक हो जाती। तो इसीलिए हमारे को हमेशा व्यर्थ संकल्पों से अपने को बचना है। निगेटिव कभी सोचो नहीं, व्यर्थ सोचो नहीं, पराई बातों को सोचो नहीं, पुरानी बातों को सोचो। ना पराई बातों को सोचना है ना पुरानी बातों को सोचो। इधर उधर देखेंगे, देखो बाबा कहते हैं तुम्हारा ये घोड़ रेस है, ह्यूमन है, जैसा घोड़ों घोड़े भागते वैसा तुम भाग रहे हो, तुम्हारी रेस चल रही है। रेस के समय तो हमेशा लक्ष्य की तरफ ध्यान होता है, मेरे को वहां जल्दी से जल्दी पहुंचना है, समय के पहले पहुंचना है, इधर उधर नहीं देखे। तो वैसा इधर उधर नहीं देखो, पराई बातों को देखो नहीं। सदैव क्या करो, स्वचिंतन करो, स्व का दर्शन करो, स्वदर्शन चक्र। स्वदर्शन चक्र क्या है? खुद की स्थिति को चेक करते रहो और आगे बढ़ते रहो। अगर इधर उधर देखेंगे तुम्हारी स्पीड कमती हो जाएगी, स्पीड कमती हो जाएगी, लक्ष्य दूर दिखाई पड़ेगा। लक्ष्य दूर दिखाई पड़ेगा उससे क्या हो जाएगा, नाउमेद हो जाएगा, पता नहीं हम समय के पहले पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच सकते। तो लक्ष्य को दूर नहीं करो, लक्ष्य को सामने रखो। इसीलिए जो बीत गया उस पुरानी बातों को कभी भी सोचो मत, उसको फुल स्टॉप लगा दो। आज भी बाबा ने कहा ड्रामा क्या, जो हो गया वो ड्रामा, वर्तमान समय में जीना सीख जाओ। मुझे मेरा वर्तमान उज्जवल बनाना है, अगर वर्तमान उज्जवल होगा तो मेरा भविष्य आप ही उज्जवल हो जाएगा। क्या हो गया उसके लिए नहीं सोचना है, क्या करना है ये सोचो। तो सोच के ऊपर ही सारा खेल होता है, संकल्पों का ही तो खेल है। शास्त्रों में बताते हैं ब्रह्मा को संकल्प उठा, क्या संकल्प उठा, नई दुनिया बनाऊं, बना दिया उसे। अगर एक ब्रह्मा ने संकल्प करके नई दुनिया बना दिया, इतने ब्राह्मण अगर संकल्प करते हैं कि हमको जल्दी से जल्दी अपनी उस स्टेज को, संपूर्णता को प्राप्त करना है, तो क्या नहीं हो सकता है, पॉसिबल नहीं है कि? सिर्फ संकल्पों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है, उसमें हमारी शक्तियां लीक हो जाती है। व्यर्थ संकल्पों में हमारा समय वेस्ट हो जाता है, हमारा श्वास वेस्ट हो जाता है, जो हमारा इस समय सबसे बड़ी प्रॉपर्टी। तो जब वेस्ट हो जाता है तो आत्माएं कमजोर हो जाती है। मुझे तो शक्तिशाली आत्मा बनना है, तभी तो हम समय के ऊपर अपने स्थान तक पहुंच सकेंगे, लक्ष्य तक पहुंच सकेंगे। तो अपने ऊपर अटेंशन देने की आवश्यकता। और हम तो इस दुनिया में क्या है, एक बात याद रख लो, एक तो खुद को हमेशा इस सृष्टि के ऊपर गेस्ट हाउस, हम गेस्ट हाउस में, ये सृष्टि हमारे रहने के लायक नहीं, ये मुसाफिर खाना है, गेस्ट हाउस। गेस्ट हाउस जो होता है उसमें परमानेंट नहीं रह जाता है, टेम्पररी होता है। कभी भी किसी की टिकट कट जावे कुछ बोल सकते हैं क्या? कभी भी जाना पड़े। और दूसरा, माया को हमेशा गेट आउट करो, उसको आने ही नहीं दो। बाबा कहता है बच्चे उसको डबल लॉक लगा दो तुम। डबल लॉक कौन सा है? वो है योग और सेवा। बाबा की याद में रहो और सेवा करते रहो, मन को उसमें बिजी करके रखो बाबा के साथ, और तन को सेवा में बिजी करके रखो। तो जितना जितना तुम डबल लॉक लगाएंगे ना, माया कभी तुम्हारे पास आएगी नहीं, तुमको हैरान नहीं करेगी, तंग नहीं करेगी, तुम्हारा उमंग कमती नहीं करेगी, तुम्हारा उमंग बढ़ता जाएगा। परंतु दरवाजे खोल के रखेंगे तो क्या होगा, जरूर आएगी ना। मैं और मेरा ये है दरवाजा खोलना, और सेवा और योग ये है दरवाजे को बंद करना, डबल लॉक लगाना। तो इसीलिए मैं को लाना ही नहीं, जिससे माया आकर के तुमको तंग करे, माया तुम्हारी खुशी को गायब करे, तुम्हारे उमंग उत्साह को गायब करे, वो उसको चांस ही नहीं देना माया को कभी। तो ये हमारे ऊपर है, सिर्फ हमको थोड़ा अपनी दिनचर्या की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता है। जितना जितना हम अपनी दिनचर्या की तरफ ध्यान देते हैं और ये ख्याल में रखते हैं कि मुझे सफल करना है और सफलता प्राप्त करनी है, इस लक्ष्य से आगे बढ़ते जाएंगे तो हमारा जो लक्ष्य है उसको पकड़ने में हमारे को कभी भी टाइम नहीं लगेगा। हम जल्दी से जल्दी अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे और बाप समान बन करके नई दुनिया में बाप के साथ साथ चलेंगे। बाबा कहते हैं ना, मैं तुम बच्चों के बगैर स्वर्ग का द्वार खोलने वाला नहीं हूं, तुम्हारे द्वारा ही खुलेगा। बाप थोड़ा ही आएगा वहां पर, वहां पर तो फर्स्ट नंबर की आत्मा आएगी, उसके साथ साथ हम जाएंगे, ब्रह्मा बाप के साथ साथ जाएंगे। तो इसीलिए उस जैसा बनेंगे तभी जाएंगे ना, ऐसा कैसा जाएंगे बताओ। साथी तो हमेशा समान होते हैं ना, साथी हमेशा जब भी जोड़ी हुई लगाई जाती है तो देखा जाता है दोनों एक जैसे हैं। ऐसा थोड़े एक एकदम ऊंचा हो और एकदम ठिंगना हो, ऐसा भी नहीं चलेंगे। तो इसीलिए हमारे को बाप समान बनना ही है, अपने लक्ष्य तक पहुंचना ही है और ब्रह्मा बाप को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते जाना है। ओम शांति।
किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया।
चलो कुछ कहा किसने क्या हो गया, खुशी खो गई मानो सब खो गया।
खुशी जैसी कोई दवा ही
सबको पिलाते रहो। प्रभु के है सच्ची खुशी, ये सेवा बड़ी है दुआओं भरी,
ये मुस्कान वरदान भगवान का, ये मुस्कान वरदान भगवान का, नाचो खुशी में नचाते रहो, सदा खुश रहो मुस्कुराते रहो, बजाना खुशी का लुटाते रहो, गाते रहो गुनगुनाते रहो, मिलन प्यारे प्रभु